कोई तो बहुत
नहीं है क्या
देव कोई थी एडवांस पार्टी
और कोई रखा है
तेज पर आप बच्चे आज भी एक माता का भवन था उसकी लड़की
696 वो उसका नाम क्या है
बड़ी हो गई वो छोटी
विठल भाई
तोड़ फोड़ करती है ऊपर का ढक्कन ले ऊपर का दरवाजा तोड़ और खुश होती है वाह मैं और कहा घड़ी फेंकेगी मोबाइल फेंकेगी और उसकी माँ ये दूसरे का फोन था उसकी मोटे उसकी माँ खुश कि मेरी वजह तो प्यार है ना बच्चों का। दूसरा और उसकी माँ कहती है उसे कोई नहीं ये बहन दिव्यान में है कि कहती है ना शराब न पियो बुरी चीज है तो इसकी सास यानी पति की माँ कहती है माँ का ध्यान से सुन ले शराब बुराई क्या है इसमें अंगूर का रस ही तो है तुम पहले पी लेते हो ये बाद में पीता है हाल देखो लोगों का
विठल भाई
तो बाबा हम सभी को आगे आने वाले समय में हमारी सेवाएं होंगी दृष्टि से और वाइब्रेशन से। इस बात पे हमें चर्चा करनी ग्रुप वाले जो भी बैठे हैं वो इस पे चिंतन करके आएंगे एक दो तीन दिन में मीटिंग रखेंगे जो सुन रहे हो वो विचार करें दृष्टि से क्या क्या होता है और हो सकता है और वाइब्रेशन से क्या क्या होगा इस पर हम चिंतन करेंगे नई पॉइंट होगी छोटेलाल भाई और इसको लिखेंगे कम से कम 10-10 अच्छे पावरफुल पॉइंट्स हैं चिंतन करें सभी। दूसरी बात थी अगले सीजन तक के लिए कोई भी अपनी कमी दान करके ही जाना बाबा ने तो कहा यही छोड़ के जाना पर हम जानते हैं कमियों को छोड़ना इतना सहज होता तो सभी मधुबन में आके दान पात्र में डाल जाते लो। दो विशेष कमियों की ओर बाबा ने ध्यान दिलाया ये भी याद रखना एक पंखा थोड़ा सा और चला दो दो कमी एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा क्रोध क्रोध चाहे थोड़ा सा हो रोग के रूप में हो तंग कर देता है बाबा ने कहा ना शब्द बाबा के अपने को भी तंग करता है और दूसरों को भी तंग करता है या नहीं हमें दूसरों का क्रोध प्रिय है बच्चों से पापा क्रोध करे अच्छा लगेगा तो हमारा क्रोध भी दूसरों को प्रिय नहीं होता ये हमें याद रखना है और हमारा क्रोध बाबा को कैसा लगता होगा क्रोध की अग्नि कहाँ तक पहुँच जाती होगी सूक्ष्म वतन तक हुई बाबा भी देखता होगा ये तो गर्मी घर तक भी आ गई मेरे लोग तक भी तो आज हम विशेष चर्चा इसी बात पर करेंगे हमें इन 6 मास में क्रोध से मुक्त होना है क्रोध का कम से कम जो फोर्स रहता है उसको डाउन करना है जो बार बार क्रोध आ जाता है जो अग्नि का काम करता है उसे हमें समाप्त करना है। स्वीकार है सबको पीछे वाले माताएं हमें एक प्रश्न पूछूंगा जो आपके लिए बहुत सुंदर होगा ये बाबा के बच्चों के लिए बहुत सुंदर बात भी होती है कि बाबा का ध्यान लेने के बाद कई आत्माओं ने बहुत क्रोध छोड़ दिया बहुत मैं 100% नहीं कह रहा पर बहुत टूट गया है ऐसी जो महान आत्माएं इस सभा में बैठी है हाथ उठाओ 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 डरने की बात नहीं बहुत अच्छा माताओं की संख्या बहुत ज्यादा है बाबा आपका हाथ देखकर बहुत खुश हो रहा वाह बच्चे वाह कहता है वहाँ भी कहता है ना नीचे और अब भी कह रहा होगा तो देखो ये सफलता है ना ज्ञान और योग की बहुत बड़ी जैसे बहुत लोग अपनी शराब बीड़ी सिगरेट तम्बाकू क्योंकि हम सभी देवकुल की महान आत्माएं हैं तो हमें सभी मनोविकारों को दूर करना है। आज भी याद है ना काम क्रोध तो जैसे काम से पुण्य नष्ट हो जाता है क्रोध से, बोलो क्रोध से शांति नष्ट होती है, आंतरिक शक्तियाँ नष्ट होती हैं, विवेक एकाग्रता भंग हो जाए, एक बार क्रोध आ जाए योग नहीं लगेगा, मन भटकने लगेगा, संकल्प भी नहीं होंगे लेकिन मन विचलित होता रहेगा, क्लिप्त होगा एकदम, बुद्धि ठहरेगी। तो क्रोध से बहुत चिंता, पहले से ही कहावत है क्रोध का प्रारंभ मूढ़ता से और अंत पश्चाताप से होता है। टीचर बने वैसे लिख ले, आपको काम आएगा क्लास कराने में। क्रोध का प्रारंभ बोलो मूर्खता, मूर्खता माना बुद्धि नष्ट हो जाती है, काम नहीं करती, मूर्खता आ जाती है, और अंत किससे होता है पश्चाताप। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं है जो क्रोध करने के बाद जब क्रोध शांत होता है पश्चाताप ना हो। ठीक बात है या नहीं? क्रोध पे नहीं सबको आता है, हम सब तो ज्ञानी हैं और ये लक्ष्य लिए हुए कि हमें संपूर्ण विकारी बनना है, हमें ज्यादा पश्चाताप होता है, होता है या नहीं? कन्या को गुस्सा आता है, आता तो है, जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, खुशी होती है, वाह आज मैंने बड़ा अच्छा काम किया, या पश्चाताप होता है? पश्चाताप होता है ना। दूसरी एक कहावत के रूप में इसका समाधान भी है, धैर्य से क्रोध को जीता जा सकता है, डिफेंस धैर्य का। मनुष्य एकदम रिएक्ट करता है ना, प्रतिक्रिया करता है, कोई जरा सा बोले तो ठहरता नहीं, तुरंत उबाल आता है ना, जैसे भोजन सब दूध में आ जाता है ना, उबाल बाहर निकलना लगता है। तो बहुत अच्छी चीज है कि हम अपने अंदर धैर्य धारण करें, थोड़ा ठहरने की आदत डाले, सुनने का संस्कार डाले, कोई कुछ बोल रहा है ना उल्टा सुनता है, थोड़ा सुन तो ले, उसका निकल तो देने में, वो भी हल्का हो जाए थोड़ा। अब हम इसको बहुत प्रैक्टिकल में करते हैं, क्रोध निश्चित रूप से योगियों के लिए महान शत्रु है। गीता में भी महावाक्य अर्जुन काम क्रोध लोग मनुष्य के महावैरी नर्क के द्वार हैं, तीनों। आजकल संसार में बहुत सारा पाप लोग से हो रहा है, बहुत सारा गंदगी काम वासना से हो रही है, बहुत सारी और लड़ाई झगड़े घर घर में अहम से हो रहे हैं। तो ये क्रोध हर तरह से बुरा है, ये हमारा शत्रु है, हमें ये मानकर इसको जीतना है। ठीक है, तो बाबा हमेशा तीन उदाहरण देते हैं बहुत अच्छे हमारी स्थिति के। एक है शंकर के गले में सांप, यानी सभी विकारों को उन्होंने अपने गले की माला बना ली, महादेव ने जैसा। दूसरा दिखाते हैं श्री कृष्ण का सर के फनों पर डांस करना, सर माना सभी मनोविकार, इन पर विजय प्राप्त कर ली, यदि इनके आत्मा विजय प्राप्त कर लेती है तो डांस करती है। और तीसरी भी कोई चीज है, हाँ विष्णु से सैया पर वध कर लिया, अचल अडोल स्थिति हो गई, सागर की लहरें तूफान विचलित नहीं कर रहे हैं, विष्णु के लिए दिखाया गीता ज्ञान में मग्न है। तो विकारों को जीतने के लिए हमें ज्ञान में मग्न होना, हमारे पास जो ईश्वरीय ज्ञान है अब हम इसको जीवन ज्ञान बना, ये सब यूज करेंगे, जीवन के लिए ये ज्ञान है, जीवन को महान बनाने के लिए ज्ञान है। ज्ञान है, तो जो कितना इस सत्य गीता ज्ञान में मग्न है वो विकारों पर विजयी है, हमें इस पर विजय है। क्रोध का सीधा सा नाता शान से है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ आपके सामने, क्योंकि बात कोई बताता नहीं किसी को। काम से भी क्रोध की उत्पत्ति होती है, काम वासना को जब दबाया जाता है तो क्रोध के रूप में वो बाहर निकलता है, जिसने अपनी काम वासना को जितना जीत लिया उतना ही उसका चित्त निर्मल होता है, वो व्यक्ति क्रोध मुक्त हो जाता है। किंतु काम की अग्नि ही प्रज्वलित होती है, उत्तेजित करती है मनुष्य मन को क्रोधित करती है। हमें इस बात को ध्यान देना है कि हम जो बल से इन विकारों पर ये बात हम सभी बहुत अच्छी तरह जान लेनी चाहिए। व्यक्ति मूल्यों में रो जाती है, फिर विज्ञान लेंगे बिना योग बल के इन विकारों को जीता नहीं जाता। कोई सोचे इनको दबा दिया जाए, हम तो बाबा के बन गए, हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ली, हो गया काम, नहीं हो सकते काम, हमें इसके लिए योग साधना की जरूरत है। बिना अच्छे योग के आत्मा पतित से पावन एक है योग से विकर्म विनाश होंगे, दूसरा है विकार विनाश होंगे, और ये हो जाता है बताया नहीं रोज जाता है। क्रोध को भी योग बल से विवाद भी हो सकते हैं। तो अब हम इस पर एक प्रैक्टिकल चर्चा करना चाहते हैं, और सभी अपने को चेक करेंगे कि हमें क्रोध कब कहाँ किन परिस्थितियों में आता है, और वहाँ हम सबसे पहले ज्ञान की किस बात का प्रयोग करें। योग बल तो है, लेकिन हमारे पास सद्विवेक भी है, हमारे पास ज्ञान भी है, उसका प्रयोग भी हमें ज्ञान करता है, तो हम विधि भी अपनाएंगे कुछ और इसके कारणों पर भी। देखो एक और चीज, जैसे ये प्रसिद्ध है गीता में भी, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, जैसे कामनाओं से क्रोध की उत्पत्ति है। अब हम कामनाएं निकालेंगे, और कामनाओं का एक छोटा सा शब्द हम प्रयोग करेंगे, वो है क्यों। माँ और लड़की साथ रहते हैं, लड़की बार बार एक गलती कर रही है किचन में, माँ ने उसको पांच सात बार समझा दिया कि नहीं ऐसे करो, माँ की तुम यहाँ नहीं यहाँ रखा करो, वो बार बार और कहीं रख देती है, और फिर माँ को गुस्सा आता है, और गुस्से का संकल्प क्या होता है, मैंने इतनी बार समझाया तू क्यों नहीं सुधरती, क्यों। और आगे अब आप सोचेंगे कहाँ कहाँ मनुष्य को क्रोध आता है, उसका बीज होता है क्यों, निकालो चिंतन करें कभी, फिर बहुत सुना देता हूँ, तब तक आप चिंतन को आगे बढ़ाए। कई लोग कहते हैं हमें वैसे गुस्सा नहीं आता, पर कोई झूठ बोलता है तो बहुत गुस्सा आता है, क्या संकल्प होता है, झूठ क्यों बोला, ये क्यों बड़ा पेड़ा है, बाबा जी कहते बड़ा पेड़ा। आज भी एक माता का बोल रहा, मेरा पति वैसे तो ज्ञान में चलता है, पर बात बात में झूठ बोलता तो मुझे गुस्सा आता
है।
मैंने कहा तुम दोनों ही महान हो, वो गुस्सा कर वो झूठ बोलता है, तुम क्रोध करती हो, दोनों महान, भगवान दोनों को देख के राजी होगा, हंसने लगी होगी, अरे वो गलती कर रहा है, तुम तो गलती न करो। लोग सोचते हैं कलयुग में सभी लोग सत्यवादी हैं, एक तो सचिव हो जाएगा, भगवान को आना ही नहीं पड़ेगा, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, बाबा ने कहा ना तो चार दिन पहले बहुत अच्छी बात रखे, मेरी इस मेहनत को तुम ना करो, बर्बाद ना करो, भगवान मेहनत कर रहा है ना हमसे, तो सत्य हो सकता है क्या कलयुग में संतोष? ठीक है, सत्य बोलने वाले भी लोग हैं, सभी झूठे नहीं है, परंतु अधिकतर तो झूठ का ही साम्राज्य है ना। कलयुग कलह कलेश का युग है ना, यहाँ अगर संपूर्ण शांति हो तो ये कलयुग क्या है। सब में प्रेम हो, बहुत अच्छा हो, सब मनुष्य लोग कहते हैं मनुष्य को क्या हो गया, क्या हो गया हम जानते हैं कलयुग का, इससे अच्छा तो हो ही नहीं, इसके बाद भी मनुष्य में बहुत अच्छी होगी ना, हम देखते हैं तो बहुत अच्छे हैं मिलते हैं। अब चिंतन किया सभी ने, क्यों निकालो क्रोध का, क्यों है मेरी बात क्यों नहीं मानते, बातें सुनाओ है टाइम पे क्यों नहीं आते, बिल्कुल इससे बहुत झगड़े होते हैं। चार लोग काम कर रहे हैं, एक टाइम पे आ गया, तीन दस दस मिनट लेट आ रहे, आते ही गुस्सा आएगा ना उनसे, रोज टाइम फिक्स किया हुआ तुम आते ही नहीं हो, ठंडे हो, ये क्यों नहीं सुधरते, और बोलो बोलो सच्ची बातें हैं, मेरा डिसरिगार्ड क्यों किया, मैं इतना पुराना ज्ञान में बहन जी मेरी राय नहीं लेती, क्यों नहीं लेती, माताओं का भी ख्याल नहीं है, सुनाओ घरों की बातें। हाँ बार बार डांटा जाता है किसी को, उसे भी कहीं क्रोध आता है तो मायूसी आ जाती है, तो एक अलग बात है, हम अपने क्रोध की बात करें, दूसरे के क्रोध की बात नहीं करेंगे। मेरे से गलती बार बार क्यों होती, ये भी क्यों, अब कोच वाली बहने बताए दे दिया, बोलो स्टूडेंट सुधरते क्यों नहीं, टाइम पे क्लास में क्यों नहीं आते, बोलो और कुछ। मैं सोचा करता हूँ, देखो हर मनुष्य दूसरे को सुधारना चाहता है ना, भावना तो बहुत अच्छी होती है, बाप माँ भी अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, भावना तो बहुत सुंदर है, और बाबा भी हम सबको सुधारना चाहता है, बाबा का धैर्य देखो, 70 साल हो गए हम समझाते समझाते, कभी परेशान नहीं होता ये सुधरते क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास क्यों नहीं है, क्योंकि वो नॉलेज थोड़ी है, उसे पता है जो कुछ हो रहा है वही होना है, कर्म अनुसार सबका पार्ट है, जिस जो कल पहले जितना सुधरे थे अब भी सुधर जाएंगे, कोई अस्त्र सन बन जाएगा तो विजयी वतन से समर्पित हो जाएंगे, तो बहुत खुशी हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। और एक बार उसने ये खेल देखा है ना हम सबका, हमें तो भूल गया, उसे तो नहीं भूलता ना, अनेक बार हम कहें हजारों बार तो भी ठीक नहीं, पर सोचते हजारों बार उसने ये खेल देखा है तो उसके लिए तो शास्त्री रहना बिल्कुल सहज है ना, कहा दो चार दिन पहले, मुझे कुछ भी अफसोस नहीं होता, मैं तो शास्त्री ड्रामा की हस्ती निश्चित है, सबके साथ जो कुछ हो रहा है वो उनके कर्म अनुसार हो रहा है, इसलिए बाबा उसने मैं तुम करेगा उसने विधि बता दी, तुम उसके योग लगाओ, ऐसी श्रेष्ठ धारणा रखो, ऐसा दूसरों को सुंदर वाइब्रेशन दो, तो तुम्हारा भी कल्याण होगा, तो बाबा हमारा टीचर सदगुरु है, ऐसे नहीं वही हमारे भी कर्म विनाश कर देगा, ऐसा नहीं होगा, वो हमारा भाई है, तो सभी चेक कर ले क्रोध कहाँ और भी कई क्यों हो सकते हैं, सूक्ष्म भी हो जाते हैं क्यों, इच्छाएं भी क्रोध को जन्म देती हैं, तब हमें क्रोध को जीतना है, बच्चों पे क्रोध आता है माँ बाप को, उनकी स्थिति देखकर मन में उठता है क्यों, कैसे इसका समाधान करेंगे ज्ञान से, कुछ छोटी सी बातें हम ध्यान में रखें और प्रैक्टिकल में उन पर ध्यान देकर प्रैक्टिस करके अपनी स्थिति बंद करें, इस संसार में सभी की बुद्धि अपनी इससे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है ना आजकल, हर माँ बाप चाहता उसको बहुत सुंदर है, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चे बैठे हैं, बच्चों को पता नहीं होता हमारे माँ बाप परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते। तो सबकी उत्तरी अपनी है, सभी की फर्स्ट क्लास बुद्धि हो, फोर्थ क्लास बुद्धि हो, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, वैरायटी है ना। दूसरी बात याद रखेंगे, सभी का भाग्य अपना है। तीसरी बात याद रखेंगे, सभी के सुधरने की स्पीड और तरीका भी अपना अपना है। कोई ठोकर खाकर सुधरते हैं, कोई गलती करके सुधर जाते हैं, कोई विवेक के द्वारा सुधर जाते हैं, कोई ज्ञान योग के द्वारा सुधर जाते हैं। सबके सुधरने की गति तरीका भी अलग अलग है। हम चाहे जैसे हम चाहते हैं वैसे ही सब सुधरे, ये नहीं होगा। दो चार दिन पहले मुरली ने एक बहुत पावरफुल बात आई, आप सबने नोट की होगी, आपको याद होगा, जैसे बाप की महिमा परंपार है, वैसे ही कर्म भव ये विकर्म नष्ट होने की जो हिसाब किताब है, ये समाप्त होने का भी बड़ा ही भारी तेज
चलेगा।
व्यक्ति सबके हिसाब सुख कराने की रोज डिक्शनरी भी बड़ी सुख,
हाँ 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 मेरे बैठ मारा
क्योंकि सबको क्लीन होकर
सरे।
इसलिए ध्यान दे, माँ बाप जो बैठे हैं, आपके घर में दो बच्चे हैं, आपको तो निश्चित रूप से ये फीलिंग है, ये मेरे बच्चे हैं, ये अच्छे से अच्छे बने, स्वस्थ रहें, खुश रहें, लेकिन वो बच्चे होने के अलावा और क्या है? मैंने घुमा के प्रश्न पूछ लिया, छोटी सी बात, क्या है वो? आत्माएं हैं, वो है या नहीं माता है, बताओ? वो आत्माएं भी हैं। अब तो आपके बच्चे हैं वो, और हो सकता है पिछले जन्म में आप उनके बच्चे रहे हो, होगा या नहीं? या नहीं वो सदा आपके बच्चे रहेंगे, तो रहते जन्म होगा ऐसा? मुझे हंसी की एक बात और याद आ गई, मैंने सुनाई भी है, एक बहन जी को अपने पति से बहुत प्यार, दोनों ज्ञान में, कहा ऐसा योग का प्रयोग बताओ, 84 जन्म हम पति पत्नी रूप में साथ रहे। मैंने कहा इतना प्यार अगर तुम्हारा भगवान से होता तो कुछ कल्याण हो गया होता। मेरे से लोग खुल के बात कर लेते, क्योंकि मैं किसी का नाम धाम नहीं पूछता, तुम कौन बात कर रहे हैं मैं पूछता नहीं, मैं उसकी मुझे जरूरत है, मुझे मैं याद रखना है, मैं क्या करूँगा। तो लोग सब अपनी खुल के बात कर लेते हैं, चाहे वो प्योरिटी इम्प्योरिटी की हो, चाहे समस्याओं की हो, खुल के कर लेते हैं, सभी तरह के भाई रहने भी। तो देखिए वो आपके बच्चे हैं, पर साथ में वो क्या लाए हैं? उनके साथ भी तो उनकी 84 जन्मों की कहानी है ना, 63 जन्मों का पाप पुण्य सब वो उनके साथ भी है। अब उसमें एक माँ बाप तो कुछ कर नहीं सकते ना, उसका पाप बढ़ा हुआ है या पुण्य बढ़ा हुआ है, इस समय उसका पाप सामने आ गया या पुण्य सामने आ गया, अलग अलग समय अलग अलग चीज सामने होती है ना, उसमें माँ बाप तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। तो थोड़ा हल्का होकर उन्हें सहयोग देना ही पड़ेगा। कैसा सहयोग? माताओं से पूछ रहा हूँ, कौन सा सहयोग देगी बच्चों को? आप जानते हैं कुछ भी गहरा नहीं है, बोलो पीछे वाली माताएं, भक्ति बहन, श्रेष्ठ भावनाओं के वाइब्रेशन, पवित्र भोजन। और मैं एक चीज और सिखाता हूँ माताओं को, करती तो नहीं माताएं, फिर भी कह देता हूँ दोबारा, में ये भावना नहीं रखता कि हम नहीं करेंगी, पर बहुत थोड़े करते हैं। वो तो बाबा के इस कार्य की गति ऐसी है। अपने अपने घरों में 3 बार 10-10 मिनट योग करें, 1 बार शांति की किरणें फैलाएं, 1 बार पवित्रता की किरणें और 1 बार शक्तियों की किरणें, आपके घर की अनेक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगर माताएं ये काम कर लें तो उनका बहुत सारा टाइम समस्याओं में जाता है, बहुत सारी मन की एनर्जी, मन कभी टेंशन में आता है, शांत होता है, क्वेश्चन उठने लगते हैं, बाबा को कहते रहते बाबा हमारे लिए कुछ नहीं करता, बाबा से भी नाराज होते हैं ना, कंडे की मुरली में फिर सबसे संतुष्ट अपने मन से, बुद्धि से, ड्रामा से, बाप से, परिवार से। तो ये काम सबको करना है। तो बच्चों पर क्रोध नहीं, वाइब्रेशन, क्योंकि उनके साथ भी उनका कदेशक जन्मों का सब कुछ आ रहा है। दूसरी एक गुहे बात सभी को और याद रखनी है, सभी ध्यान से सुन लेंगे ये बात, इस बात को जानने से अनेक प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। देखिए हमारे लिए ये बात बहुत गुह्य है, लेकिन हमारी भारतीय फिलोसॉफी में, शास्त्रों में जो ज्ञान दिया गया उसमें अनेक प्रश्न अनुत्तरित रह गए, अनआंसर्ड क्वेश्चन, समझ गए इसका, जिनका उत्तर नहीं दिया गया, दिया नहीं जा सका। उन सब का उत्तर इस एक बात में है कि जब हम सब आत्माएं परम धाम में, हमारी जो अनादि स्थिति है उसमें सभी की डिग्री अलग अलग है। है तो सब संपूर्ण, लेकिन सबकी संपूर्णता 100 डिग्री नहीं है। मैंने अपने कानों से बाबा की मुरली सुनी रात्रि क्लास कतार में, शिव बाबा 100 डिग्री, ब्रह्मा 99, ममा 98 और फिर अस्वतंत्र, इस तरह क्रम चलता है। और धर्मों की आत्माओं की डिग्री अपेक्षाकृत कम होती है, देवी देवता धर्म की आत्माओं की डिग्री ऊंची होती है। इस डिग्री के अनुसार ही सब नीचे उतरते हैं, इस डिग्री के अनुसार ही पाप और पुण्य होते हैं, सुख दुख मिलते हैं। ये बहुत गुह्य बात है। अब भी सबकी डिग्री नीचे उतर आई है, लेकिन कोई आत्माएं बहुत कमजोर हैं, जिनकी डिग्री थोड़ी थी, जब वो नीचे उतर आए तो वो सबसे ज्यादा कमजोर होंगे ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लो आपके पास 10 बर्तन हैं, एक एक लीटर का, 2 का 3 का 5 10, सब में दूध भर दिया जाए तो सबके लिए क्या कहा जाएगा, सब फुल है। 1 लीटर वाला भी फुल है, 10 लीटर वाला भी फुल है, लेकिन दूध उसमें कितना है, 1 लीटर, और उसमें 10 लीटर है, दोनों संपूर्ण। ऐसे ही आत्माओं का है, क्लियर है ना। इस एक बात को ध्यान में रखते हुए हम थोड़े साक्षी हो जाए, शांत, इसको शांत करो अपने। अब सबसे बड़ा विवेक है हमारा इस समय संगम पर कि हम अपने परिवार और साथियों को, कामकाज करते हैं यहाँ वहाँ के साथी परिवार, बिल्कुल अपने प्रियजन घनिष्ठ, उन सब के भिन्न भिन्न कर्म देखते हुए चित्त को शांत करें, मान अपमान से भी ऊपर उठ जाए, ये समझ ले कि इस समय हमें 84 जन्मों का, कल 21 जन्मों का बहुत ज्यादा और बाकी 63 का श्रेष्ठ भाग्य बनाने का सुअवसर मिल गया है। सब चिंतन करें हम इस स्वर्णिम अवसर का कैसे फायदा उठा रहे हैं। ऐसे तो नहीं कोई एक आत्मा हमें जन्म जन्म का भाग्य नहीं बनाने दे रही है, ये बहुतों के साथ हो रहा है ना। एक ही घर में व्यक्ति है जो ऐसा व्यवहार करता है कि योग ही नहीं लगता, शांति नहीं रहती, खुशी नहीं रहती, सब बिगड़ा हुआ है, तो एक आत्मा हमें जन्म जन्म के भाग्य से वंचित कर रही है। यहाँ हमें थोड़ा समझदार होना है। देखो उसके साथ आपको रहना ही है, उसे आप छोड़ नहीं सकते। क्योंकि उसे अगर आप छोड़ भी दे, मान लो जंगल में चले जाए आप उसे छोड़कर, तो क्या आपके पीछे पीछे जाएगा? क्या जाएगा? माताएं चुप है, बहुत गंभीर हो गई है आप। वो व्यक्ति क्यों आपका साथी बना है अंत में? क्यों साथी बना है? माताओं के आगे सुने, चुप है माता। क्यों साथी बना है वो व्यक्ति आपका अंत में? बोलो, तुम बोलो, बोलो। कड़े हिसाब किताब उससे ही है। किसी समय में हमने भी उसको बहुत तंग किया है, उसने भी संकल्प किया था आने दो तुम्हारा अच्छा समय, मैं दिखाऊंगा तुम्हें कैसे योगी बनोगी। वो भक्ति करते थे, हम उन्हें रोकते थे, डिस्टर्ब करते थे। तो वो जो कर्म है वो तो हमारे पीछे आएगा ना। हम जंगल में झोपड़ी बना के रहने लगे तो क्या होगा? वो कर्म तो पीछे पीछे चलेगा, वो वहाँ चैन से नहीं रहने देगा। इसलिए विवेक पूर्वक, हाँ, कुछ क्षमा याचना भी करनी पड़ेगी, कुछ वाइब्रेशंस भी देना पड़ेगा, और कुछ सुनने और सहन करने के लिए तैयार भी होना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता था, अन्ना हजारे जी आए थे, बार बार बोलते थे, मुझे लोगों ने ये कहा वो कहा, मैं तो सब पी गया। कुछ करना है तो पीना पड़ेगा, समझे ना? पीना पानी और जूस नहीं, जहर का घूंट भी पीना पड़ेगा, अपमान का घूंट भी पीना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं? अगर एक कुछ गलत व्यवहार कर रहा है, हम परेशान हो, हम क्रोधित हो, हम भी कुछ करते रहे तो बिगड़ जाएगा ना खेल सारा। भले हम दोष उसको देंगे, लेकिन दोष तो अपने चिंतन का, अपनी स्थिति का होगा ना। हल्के भी रहना पड़ेगा, कुछ चीजों को स्वीकार भी करना पड़ेगा। हमारे ही कर्मों का खेल हम यहाँ ले आया है, हमारे ही कर्मों का प्रभाव हमारे साथ काम कर रहा है, उन्हें नष्ट नहीं करना है, चित्त को शांत करें। बड़ी गहराई से चिंतन करेंगे। अब क्रोध को जीतने की बहुत सरल दो विधि, बस ज्यादा नहीं। देखो सभी को इससे मुक्त होना ही है, आनंद ही उसमें आएगा। और हम ये भी जानते हैं कोई भी अपने को क्रोध युक्त तो रखना नहीं चाहता, क्रोध मुक्त ही सब रखना चाहते हैं। यही अपनी भी इच्छा है, यही बाबा की इच्छा है, यही हमारे साथियों की इच्छा है। तो अपने लिए तो भावना रखनी है, मुझे क्रोध को जीतना है, मैं काम न कर ले, मैं जीत लूंगी, ये मेरी चीज थी ही नहीं रहेगी। क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो शांति है। कभी भी बैठ कर सात बार रिपीट कर ले, मन में जो अच्छी तरह से फीलिंग सही स्वीकार कर, क्रोध मेरा संस्कार,
आप इधर आके बैठ,
मेरा संस्कार तो है या नहीं? है ही है, मेरा स्वभाव तो भी फुल है। एक करते दूसरी प्रैक्टिस, सवेरे उठते ही, मैं पहले भी ये बात कही थी, फिर से सुने, सवेरे उठकर 6 बजे तक पहले ही करें तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले 10 मिनट में भूल जाएं तो योग करने के बाद कर लें, फिर भूल जाएं तो 6 बजे तक कर लें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लिख लो। दूसरा, मैं विजयी रतन हूँ। तो शक्तियाँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ से शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। मैं विजयी रतन हूँ ये संकल्प करते हुए शक्तियाँ हमें विजयी बनाने लगेंगी। अब किसने विजयी बनाने लगेंगी? तीसरा, मैं क्रोध मुक्त हूँ। अब हमें क्रोध पर विजय दिलाने लगेंगी ये सत्य। तीन क्रम आप याद रखेंगे, पहला मैं सर्व शक्तिवान हूँ, दूसरा मैं विजय वसन हूँ। तीसरा मैं क्रोध मुक्त हूँ, बिल्कुल फीलिंग करें क्रोध गया मेरा। क्योंकि बार बार अगर हम ये सोचते हैं मुझे बहुत क्रोध आता है, ये तो जाता ही नहीं, 30 साल तो हो गए, 50 साल तो हो गए, ये जाएगा ही नहीं, ये संकल्प गलत हो गए। मैं क्रोध मुक्त तो छोटा संकल्प करेंगे, मेरा चित्त शांत है। इस क्रम से करेंगे, कम से कम 3-3 बार कर लिया, एक बार कर लिया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, 5 बार करेंगे और अच्छे। और तीसरी विधि किसी से जुड़ी हुई, इसलिए मैं दो ही कहा था, बिल्कुल मैं आत्मा इस तरह से अलग शांत, शांति तो मेरी नेचर है। ये कहने तक न रह जाए मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, स्वीकार करें बस, जरा गहराई से स्वीकार कर ले, शांति तो मेरी नेचर है। मैंने 3 बातों में कही, 2 ही बातें हुई, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव तो शांति है। और सवेरे उत्सव स्वमान, और ये शरीरी पंक्ति फीलिंग याद होगा आपको, बाबा ने कहा है और ये सबको याद रखना है सवेरे के योग में, कि जब तुम सुदर्शन चक्रधारी होते हो तो संसार को सुख खुशी का दान मिलता है, और जब तुम अशरीरी होते हो तो संसार को शांति का दान मिलता है। बहुत अच्छी सेवा सवेरे के समय हम इस तरह करेंगे। एक और बात मुझे अच्छी याद आ गई, मनोवैज्ञानिक बात है, आप 1 मिनट भी जैसे ही योग अभ्यास करेंगे, 1-2 मिनट भी उन सब आत्माओं को शांति का दान दे दो जिनको क्रोध आता है, और ये संकल्प कर लो इन सब की क्रोध की अग्नि शांत हो जाए, सबका जीवन सुखी हो जाए, सबके परिवारों में प्रेम हो जाए। हमारे इन संकल्पों का बड़ा महत्व है, क्यों महत्व है, सोने हम पूर्वज इस देव देवियां, देखो इस देव देवियां सोच रहे हैं इन सब का शांत हो जाए तो बहुत प्रभाव होगा, पूर्वज सोच रहे हैं सबके परिवारों में प्रेम हो जाए, सभी क्रोध मुक्त हो जाए, बहुत जबरदस्त इफेक्ट होगा। तो ये सब बातें सभी करेंगे। एक बात लास्ट और आपको कहूँ, आज मुझे याद आ रही थी शाम को, मुझे बहुत प्रिय लगी ये बात, और ये बात हमारे स्वमान की भी हमें याद दिलाती है, और हमारे महान कर्तव्यों की भी। बाबा ने 3-4-5 साल पहले की बात होगी, टीचर्स बहनों को खड़ा किया नीचे, और एक बहुत अच्छी बात कही कि रोज सवेरे बाबा से दृष्टि लिया करो और सारे संसार को दृष्टि दिया करो। समझ रहे शरीर की गुह्यता और महानता को, बाबा की दृष्टि तो बहुत बड़ी चीज है, सुख वतन में चले और बाबा सामने है हमें दृष्टि दे रहे हैं, और साथ में वो भी कर ले जो सार बाबा ने कहा, हर कर्म प्रारंभ करने से पहले बाप से सफलता का वरदान ले लो। हम इसकी शुरुआत रोज सवेरे से कर लिया करें, बाबा सामने हैं, दृष्टि दे रहे हैं, फिर बाबा हमें तिलक लगा देते हैं और वरदान देते हैं, बच्चे क्रोध मुक्त भो, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सभी करना, संसार को दृष्टि दो, टीचर ने कहा था वही स्वरूप, जो कि हम सभी सुदेव देवियां हैं, तो इस देवियां जब संसार को दृष्टि देंगी तो संसार में श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलेंगे, और ये बहुत बड़ी चीज होगी। तो मैंने आपको होमवर्क दिया, सभी भाई अब तो बैठे हैं, सुन लिया होगा, दृष्टि और वाइब्रेशन, इस पर हम बहुत अच्छी चर्चा करेंगे, दुनिया भी करेंगे, एक क्लास और रख लेंगे जाने से पहले, 7 दिन के अंदर ही रख लेना क्लास। तो सभी आप सुख संवर्तन में चलेंगे, बाबा से भक्ति लेंगे, वरदान देंगे और सारे संसार को दृष्टि देंगे, पवित्र दृष्टि, शक्तिशाली दृष्टि, वरदानी दृष्टि।
भर लीजिए शांति से, भर लीजिए।